بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت ایوم اس کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ حجرات کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت باشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان لانے والو، بہت سی سوچوں سے بچو کہ کچھ سوچیں پاپ ہوتی ہیں، اور ٹوہ میں مت رہو، اور نہ تم میں سے کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی نندا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا ماس کھائے؟ تمہیں سوئم اس بات سے گھن آئے گی، اور ایشور سے ڈرتے رہو، نسندیہ ایشور توبہ سویکار کرنے والا اور دیاوان ہے۔ ہے لوگو، ہم نے تمہیں ایک پرش و استری سے پیدا کیا، اور تمہاری بہت سی جاتیاں اور ونش بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज शनिवार है, खुर्दाद की 7 मई की 28 और शवाल की 26 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराएगा। हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.iribi.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है pastoday.com/hi और व्हाट्सएप पर संपर्क के लिए हमारा नंबर है 0098-9035-06-5492। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम ईरान भ्रमण और सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम होगा उज्ज्वल भविष्य। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान द्वारा यूनान के 2 ऑयल टैंकरों को रोके जाने से अमेरिका परेशान हो गया है। ज़ायनी सांसद ने कहा कि मस्जिद अल-अक्सा के अंदर सेनेट बनाने का समय आ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस पर लगे प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 8 सालों में कोई ऐसा गलत काम नहीं हुआ जिससे देश की जनता को शर्मिंदगी उठानी पड़े। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान द्वारा यूनान के 2 तेल टैंकरों को रोके जाने पर अमेरिका का कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रहा है। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के कमांडर ने एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए कहा कि देश की नौसेना इस मामले की जांच कर रही है। इस बारे में उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया। इसी बीच IRGC के जनसंपर्क विभाग की ओर से एक बयान जारी करके ऐलान किया गया है कि यूनान के 2 तेल टैंकरों को उल्लंघन के कारण उसकी नौसेना ने शुक्रवार को फारस की खाड़ी में रोक लिया। ईरान की ओर से ये कार्यवाही तेहरान में मौजूद यूनान के कार्यवाहक राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब करने के बाद की गई। यूनान ने पिछले महीने ईरान का ध्वज लगे हुए एक तेल टैंकर को रोक लिया था। रॉयटर्स का दावा है कि यूनान ने उस टैंकर का तेल अमेरिका के हवाले कर दिया। इस संदर्भ में यूनान के कार्यवाहक राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब करके इस्लामी गणतंत्र ईरान की आपत्ति से उनको अवगत कराया गया। इसी प्रकार शुक्रवार को तेहरान में तैनात स्विट्जरलैंड के कार्यवाहक राजदूत को ईरान की आपत्ति से अवगत कराते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन और समुद्री चोरी के बारे में सचेत किया गया था।
अल जजीरा ने दावा किया है कि इसराइल द्वारा की जाने वाली हत्याओं की प्रतिक्रिया में ईरान अब तक 20 सैनियों की हत्या कर चुका है। अल जजीरा ने लिखा है कि सिपाही पासदारान IRGC के निकट एक गैर आधिकारिक सूत्र ने बताया कि सिपाही पासदारान और ईरानी सुरक्षा तंत्र बारंबार अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के अंदर ज़ायनी शासन के कमांडरों को लक्ष्य बना चुके हैं। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में कर्नल खुदाई की शहादत की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि सिपाही पासदारन के एक पूर्व कमांडर का मानना है कि उनके देश ने इसराइली हमलों व कार्रवाइयों की अनदेखी नहीं की है, बल्कि उसने सीरिया के गोलान हाइट्स, दक्षिणी लबनान या फिलिस्तीन के अंदर अपने घटकों व समर्थकों के माध्यम से परोक्ष व अपरोक्ष रूप से प्रतिक्रिया दिखाई है। सिपाही पासदारन के निकट गैर आधिकारिक सूत्र ने अपना नाम न बताए जाने की शर्त पर कहा है कि इसराइली कमांडरों के खिलाफ ईरान की प्रत्यक्ष कार्रवाई में अब तक 20 सैनिक मारे जा चुके हैं। अल जजीरा के अनुसार 4 दिसंबर वर्ष 2020 को 45 वर्षीय मुसाद के जॉइनी अफसर व एजेंट फहीम हिनावी की हत्या को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। अल जजीरा के अनुसार ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या के 7 दिन बाद हिनावी की हत्या तेलावी में हत्या की गई थी। इसी प्रकार अल जजीरा ने लिखा है कि हिनावी के अलावा मोहसिन फखरीजादे की हत्या के बाद तेल अवीव के अंदर जो जायनी अफसरों की हत्या कर दी गई थी। इसी प्रकार अल जजीरा ने लिखा है कि पहली जनवरी वर्ष 2021 को 42 वर्षीय जायनी अफसर जनरल शारोन उस्साम की अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के नतनिया शहर में हत्या कर दी गई। क्षमा कीजिएगा, 42 वर्षीय जायनी अफसर जनरल शारोन अस्साम के अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के नतानिया शहर में हत्या कर दी गई थी।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। जावनी संसद नेसेट के एक सांसद ने कहा है कि मसूद अक्सा के अंदर नेसेट बनाने का समय आ गया है। समाचार एजेंसी फारस की रिपोर्ट के अनुसार इतमार बिन गफीर ने कहा है कि मसूद अक्सा के अंदर नेसेट बनाने का समय आ गया है। अतिवादी जावनियों ने पिछले सप्ताह मस्जिद अक्सा के अंदर चलने का आह्वान किया था। जावनी शासन ने इसी लक्ष्य से मस्जिद अक्सा के बाबुल मुगारिब को खोल दिया था और बहुत से जावनी मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए थे। संचार माध्यमों ने फिलिस्तीनियों और जावनी सैनिकों के मध्य झड़पों की सूचना दी और जावनी सैनिकों ने फिलिस्तीनियों की ओर रबर की गोलियां फायर की। इसी बीच फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने जावनी शासन को चेतावनी दी है कि अगर मस्जिद अक्सा का अनादर बंद नहीं किया गया तो हम फिर अपना संदेश मिसाइल के माध्यम से भेजेंगे।
फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के नेता ने कहा है कि अवैध जायनी शासन ने अगर मस्जिद अल अक्सा का अनादर बंद नहीं किया तो फिर हम अपना संदेश मिसाइल के माध्यम से भेजेंगे। मुशीर अल मिस्री के अनुसार जायनी शासन यदि मस्जिद अल अक्सा का अनादर जारी रखता है और ध्वज रैली निकालने से नहीं रुकता तो हमारा संदेश फिर दूसरी तरह से इस शासन को दिया जाएगा। बैतुल मुकद्दस के प्राचीन क्षेत्र पर अवैध कब्जे की वर्षगांठ पर जायनी शासन की ओर से प्रतिवर्ष 10 मई को रैली निकाली जाती है। जायनियों का ये मानना है कि पूरा बैतुल मुकद्दस जायनी शासन की राजधानी है, जबकि फिलिस्तीनियों का ये मानना है कि ये तो फिलिस्तीन की राजधानी ही है। हमास के नेता का कहना है कि 10 मई को निकाली जाने वाली रैली किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अपनी योजना को लागू करने से बचे क्योंकि प्रतिरोध पूरी तरह से तैयार है और वो केवल एक इशारे के इंतजार में हैं। हमास के इस नेता के अनुसार जायनी शासन के अधिकारियों को अपना राजनीतिक भविष्य बिगाड़ने से पहले आगामी रैली के आयोजन के बारे में पुनर्विचार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिरोध का फिर से इम्तहान न ले तो बेहतर है।
अर्जेंटीना ने औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि 6 जून को इसराइली टीम के साथ होने वाला फ्रेंडली फुटबॉल मैच रद्द कर दिया। फिलिस्तीन में इस फैसले पर खुशी है और अर्जेंटीना के इस कदम की तारीफ की जा रही है। फिलिस्तीन की अल खिज्र टीम ने अर्जेंटीना से अपील की थी कि इसराइल की कुर्ता की निंदा करते हुए इसराइली टीम के साथ मैच रद्द कर दे, क्योंकि इसराइली सेना ने फिलिस्तीनी खिलाड़ी मोहम्मद गनीम को पिछले अप्रैल महीने में कत्ल कर दिया था। इसराइल ने इस शर्मनाक घटना के बाद ये कहना शुरू कर दिया है कि अर्जेंटीना ने वित्तीय मुद्दे पर होने वाले मतभेद के कारण मैच रद्द कर दिया है। इसराइल के स्पोर्ट 5 टीवी चैनल ने कहा है कि दोनों टीमों के बीच माली मुद्दे पर मतभेद हल नहीं हो सका है। हालांकि फीफा ने इस मामले में हस्तक्षेप भी किया, मगर $5 लाख की रकम पर मतभेद था जो हल नहीं हो सका।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह बात स्वीकार की है कि रूस पर लगे प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हो रहा है। विलेदोमिर जेलेंस्की ने यह बात मानी है कि रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कैलिफोर्निया के सैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि रूस के विरुद्ध एक वैश्विक दृष्टिकोण न होने के कारण रूस के विरुद्ध प्रतिबंध अपना असर नहीं दिखा पा रहे हैं। जेलेंस्की के अनुसार कुछ देश रूस के विरुद्ध एक ओर तो प्रतिबंध लगा रहे हैं और वे ही देश दूसरी ओर से मास्को की सहायता भी कर रहे हैं। ऐसे में प्रतिबंधों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उनका कहना था कि यही वो मूल कारण है जिसकी वजह से रूस पर वैसा दबाव नहीं पड़ रहा है जैसा पड़ना चाहिए।
यूक्रेन की पीस मेकर वेबसाइट ने अमेरिका के भूतपूर्व विदेश मंत्री कैसिंजर को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। यूक्रेन युद्ध आरंभ होने के बाद से ये वेबसाइट हजारों लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर चुकी है जो रूस का समर्थन करते हैं। इस वेबसाइट ने हेनरी कैसिंजर को यूक्रेन के विरुद्ध अपराधों में सहभागी बताया है। पीसमेकर वेबसाइट उन लोगों की जानकारियों को भी सार्वजनिक कर देती है जिनको यूक्रेन का दुश्मन समझती है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। राजकोट में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में कोई ऐसा गलत काम नहीं हुआ जिसे देश की जनता को शर्मिंदगी उठानी पड़े। 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करती है गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले गए। भारत के प्रधानमंत्री शनिवार को राजकोट जिले के अतकोट में श्री पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित नवनिर्मित माटुश्री KDP मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद एक विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिज़वी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं सऊदी अरब को लेकर बाइडेन प्रशासन का यू टर्न, भारत नियंत्रित कश्मीर के हालात और पाकिस्तान में इमरान खान का हंगामा। तो सबसे पहले सऊदी अरब को लेकर बाइडेन प्रशासन का यू टर्न। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमरीका की सत्ता संभाली उसी वक्त से उन्होंने मध्य पूर्व को लेकर अपनी पूर्व घोषित नीति से पीछे हटना शुरू कर दिया और उसी रास्ते पर वो बढ़ते रहे और यहां तक कि सऊदी अरब के बारे में भी उन्होंने अपने पुराने वादों को भुला दिया। एक समीक्षा के साथ साथी सैयद मीसम।
जब से जो बाइडेन ने अमेरिका की सत्ता संभाली है उसी वक्त से उन्होंने मध्य पूर्व को लेकर अपनी पूर्व घोषित नीति से पीछे हटना शुरू कर दिया और उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया जिस पर उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़े थे। इस तरह के उदाहरणों में से एक अरब देशों को ज़ायोनी शासन के साथ संबंधों को सामान्य करने वाले समझौतों के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और रियाज को लेकर जो रुख अपनाया था वे उससे भी पीछे हटते नजर आ रहे हैं। जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रवेश किया था تو اپنی پہلی ودیشی یاترا کے لیے سعودی عرب کا چین کیا تھا اور ریاض کے ساتھ $450 بلین کے سمجھوتے کیے تھے. اب بائیڈن نے بھی ریاض جانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے تیاری شروع ہو گئی ہے, اور اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس کا ایک پرتینیدھی منڈل ریاض کے دورے پر ہے. یوکرین یدھ کے کارن وشو بازار میں ارجا کی بڑھتی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے بائیڈن پرشاسن نے سعودی عرب سے تیل اتپادن میں وردھی کا انوروھ کیا تھا جسے ریاض نے ٹھکرا دیا. اس کے علاوہ عرب دیشوں نے یوکرین پر حملے کے لیے روس کی نندا کرنے سے انکار کر دیا, جس سے امریکہ اور پشچم دوارا ماسکو پر دباؤ بنانے کی یوجنا کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہی کارن ہے کہ جو بائیڈن نے ایک بڑا یو ٹرن لیا ہے اور سعودی عرب کی یاترا کی یوجنا بنائی ہے. اگر بائیڈن ریاض کی اپنی یاترا کے دوران سعودی عرب کو تیل کا اتپادن کرنے کے لیے راضی کر لیتے ہیں تو اس سے اوپیک اور اوپیک پلس دیشوں کے بیچ ایک تناؤ کی استھتی پیدا ہو سکتی ہے. واستو میں اس پرکار بائیڈن روسی تیل کا وکلپ کھوجنے کا پریاس کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے وہ اوپیک دیشوں کے ہتوں کی قربانی چاہتے ہیں. اس کے علاوہ بائیڈن پرشاسن کا ایک اور ادیش یہ ہے کہ تیل اتپادن میں وردھی سے سعودی عرب کو ہونے والی آئے کو وہ امریکی ارتھ ویوستھا میں ڈال سکیں, تاکہ ان دنوں دیش کی ارتھ ویوستھا کو جن چنوتیوں کا سامنا ہے اس کا کسی حد تک سمادھان نکالا جا سکے. اس کے علاوہ امریکہ کھیتر میں اسرائیل کے لیے لابینگ کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ریاض اور تیل اویو کے بیچ سمبندوں کو سامان بنانے کے لیے مارگ پرشست کرے. حالانکہ سعودی عرب نے پہلے ہی یو اے ای جیسے اپنے سہیوگیوں کو اسرائیل کے ساتھ سمجھوتے کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی تھی, لیکن وہ خود اپنی جنتا کے دباؤ کے کارن اس راستے پر آگے بڑھنے سے ڈر رہا ہے. ورتمان میں امریکہ اور اسرائیل گاجر والی نیتی اپنا رہے ہیں, لیکن اگر سعودی عرب نے ان کی اس نیتی کو گمبھیرتا سے نہیں لیا تو پھر سے اسے ہنٹر کا سامنا کرنا پڑے گا.
اور اب چلتے ہیں بھارت.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा.
بھارت نینترت کشمیر کے پورو مکھیہ منتری اور نیشنل کانفرنس کے اپادھیکش عمر عبداللہ نے کیندر سرکار کی نیتیوں کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کے حالات یتھاوت ویسے ہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو آج کل پریٹک کشمیر آ رہے ہیں اس کی کچھ اور وجہ ہے, لیکن پرشاسن اس کو دوسری طرح سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وسترت رپورٹ کے ساتھ شری نگر سے ہمارے ساتھی سپتے محمد حسن.
نیشنل کانفرنس کے اپادھیکش اور جموں کشمیر کے بھوتپورو مکھیہ منتری نے کہا ہے کہ نئی دہلی نے ہم سے ہمارے وشیش اختیارات تو چھین لیے ہیں, پرنتو وہ جموں کشمیر میں شانتی استھاپت کرنے میں بری طرح اسفل ہوا ہے. جموں میں ایک جن سبھا کو سمبوجھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار نئی دہلی سے پرارتھنا بھی کی اور انہیں یہ بتایا کہ کشمیر میں کاسمیٹک سرجری نہیں بلکہ پرمنٹ سرجری کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے انہیں بار بار کہا کہ جو آپ نے طاقت کی نیتیاں اپنائی ہے اس کے گمبھیر پرینام نکلیں گے, پرنتو ہماری بات نہیں سنی گئی اور آئے دیوس جو گھٹنائیں جموں کشمیر میں گھٹ رہی ہیں اس سے یہ بات سدھ ہو گئی ہے کہ نئی دہلی کی نیتیوں کا کوئی بھی لابھ جموں کشمیر میں نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں شانتی کے حوالے سے بہت سارے وعدے کیے گئے پرنتو وہ سب درے کے درے رہ گئے. عمر عبداللہ نے کہا کہ جو ہنسک گھٹنائیں گھٹی ہیں جس میں آئے دیوس لوگ مارے جا رہے ہیں, یہ بتایا جا رہا تھا کہ 5 اگست 2019 کے نرنے کے بعد یہاں پر الگاؤں واد اور اور آتنکواد سماپت ہوگا، پرنتو یہ بات سدھ ہو گئی ہے کہ اب اس میں اور زیادہ تیزی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی جی پی کشمیر نے ابھی کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 10 سے زائد الگاؤں وادی ہتات ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ میرے پرشاسن کال میں نے ہنسا کی گھٹناؤں پر روک لگایا تھا، اور جن چھیتروں میں اب پوری شانتی آئی ہوئی تھی اب وہاں بھی ہنسک گھٹنائیں نظر آ رہی ہیں۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ چناؤ کے حوالے سے کوئی سنکیت ابھی نہیں ہے، پرنتو ہم اپنے لوگوں سے ملنا چاہ رہے ہیں اور انہیں سوچت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ویوہار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ جموں کشمیر میں شانتی ہے اور یہاں ٹوریزم ہے، ٹوریزم ہی سب کچھ نہیں ہے، میرے پرشاسن کال میں بھی لاکھوں کی سنکھیا میں جموں کشمیر میں ٹورسٹ آئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئی دہلی اور دیش کے وبھن راجیوں میں بہت زیادہ گرمی ہے، اسی کے فلسوروپ لوگ یہاں ٹورسٹ بن کر آ رہے ہیں، پرنتو اس کو شانتی کا نام دینا کسی بھی حال میں صحیح نہیں ہے۔
ٹورزم دکھاتے ہیں، یہاں ٹورسٹ آ رہے ہیں، ارے ہم نہیں آئیں گے تو کیا کریں گے، پھٹ گئے ٹورسٹ، 2 سال کووڈ کی وجہ سے کہیں جا ہی نہیں سکے، باہر کا ٹیمپریچر دیکھیے 45, 46, 47 پہ پہنچ گیا، ہمارے باہر دیکھنے نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے، لیکن اس کو بھی ایک غلط انداز میں پیش کرنا، ٹورسٹ آ رہے ہیں سب نارمل ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے جب میں وزیر اعلیٰ تھا اور میرے دور میں بھی اسی طرح ٹورسٹ آئے تو سارا کچھ ٹھیک تھا، پھر آپ کیوں کہتے ہو کہ ہم ناکام، پھر آپ کیوں کہتے ہو کہ ہماری حکومت کسی لائق نہیں تھی، کیونکہ ہمارے دور میں بھی ٹورسٹ آئے، ہمارے دور میں بھی جہاز چلے۔
انہوں نے کہا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کشمیر میں شانتی استھاپت کرنا چاہتے ہیں تو کشمیری لوگوں کا سمرتھن جیتنا ہوگا اور انہیں دل سے لگانے کی ضرورت ہے، پرنتو ابھی تک مجھے ایسا دکھ نہیں رہا ہے۔ سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان میں پورو پردھان منتری اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ان کا پرشاسن کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے اور وہ جب چاہیں ایک بڑی بھیڑ اسلام آباد میں ایکترت کر سکتے ہیں۔ ایک سمیکشا کے ساتھ ساتھی قائم رضوی۔
عمران خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے رکت پات کو روکنے اور ہنسا سے بچنے کے ادیش سے اپنے دھرنے پردرشن کو روک دیا ہے۔ پاکستان کے پورو پردھان منتری نے کہا ہے کہ انہوں نے ہنسا تتھا رکت پات سے بچنے کے لیے دھرنے کو روکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سمبندھ میں سرکار کے ساتھ کسی بھی پرکار کی کوئی سودے بازی نہیں ہوئی ہے۔ عمران خان کے انوسار مدھیاودھی چناؤ کی گھوشنا نہ کیے جانے کی استھتی میں وہ اپنے سمرتھکوں کے ساتھ پھر سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ انہوں نے اپنے سمرتھکوں کے ساتھ سرکشا بلوں کے ویوہار پر کھیت جتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھوشیہ میں اسلام آباد میں دیرگھ کالین دھرنا یا ریلی نکالنا ان کے لیے کوئی کٹھن کام نہیں ہے۔ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ آیاتی سرکار کو نہ تو وہ سویکار کریں گے اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی بھی پرکار کا کوئی سودا کریں گے۔ انصاف پارٹی کے نیتا نے جب سرکار ویرودھی دھرنے اور پردرشن کو روکنے کی بات کہی تو پاکستان کے کچھ سنچار مادھیموں نے ان پر مسلم لیگ کے ساتھ چھپ کر سودے بازی کا آروپ لگایا ہے۔ اس کے جواب میں عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سرکشا بلوں دوارا ان کے سمرتھکوں کے ورودھ ہنسک سمبھاوت کاروائی اور ادھک بل کے پریوگ کی سمبھاونا کے دشٹیگت انہوں نے پردرشنوں کو روکنے کا فیصلہ لیا ہے۔ پاکستان کی سرکار نے اس دیش کے سرکشا بلوں کو یہ ادھیکار دے دیا ہے کہ سارجنک شانتی کو بھنگ کرنے والوں کے ساتھ کڑائی سے نپٹا جائے۔ سرکار کا ماننا ہے کہ ورودھ پردرشنوں سے دیش میں ہنسا پھیل سکتی ہے۔ شاید یہی کارن ہے کہ پاکستان میں سڑکوں پر نکالی جانے والی ریلیوں کے سندرب میں وہاں کے اچھ نیالے نے دیش کے سرکشا ادھیکاریوں اور پولیس سے یہ مانگ کی ہے کہ پردرشنکاریوں کے ورودھ بل کے پریوگ سے وہ بچیں اور ان کو پردرشن کے لیے ایک الگ وشیش استھان کا انتظام کریں۔ حالانکہ پاکستان کے کچھ سنچار مادھیموں نے انصاف پارٹی کے نیتا اور شہباز شریف کی سرکار کے بیچ کسی گپ چپ سمجھوتے کی سمبھاونا ظاہر کی ہے۔ عمران خان آرمبھ سے ہی شہباز شریف کی سرکار کو آیاتت سرکار کہتے آ رہے ہیں، اسی لیے وہ پاکستان میں مدھیاودھی چناؤ کرائے جانے کی لگاتار مانگ کر رہے ہیں۔ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का ये मानना है कि उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उनको सत्ता से बेदखल किया गया है। इस काम में विपक्षी दलों ने सहयोग किया जिनको जन समर्थन हासिल नहीं है। इस प्रकार नए चुनाव करवाकर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नवाज को पाकिस्तान की जनता में कितनी लोकप्रियता हासिल है।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारी आज की इस सभा के अंत में आप सुनेंगे कार्यक्रम उज्जवल भविष्य, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम ईरान भ्रमण।
ईरान भ्रमण।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान भ्रमण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम सावे नगर के बारे में बात करेंगे। मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, ईरान के उस्ताने मरकजी प्रांत के उत्तर में एक नगर स्थित है जिसका नाम है सावे। समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर होने के बावजूद सावे नगर प्राकृतिक आकर्षणों का भी स्वामी है। यद्यपि यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क है, किंतु यहाँ पर बहुत से प्राकृतिक आकर्षण पाए जाते हैं। सावे नगर में झरने, नदियाँ, प्राकृतिक हिमनद और गुफाएँ मौजूद हैं। अर्धशुष्क क्षेत्र में इस प्रकार की प्राकृतिक चीजों की उपस्थिति वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाली है। सावेवासी स्थानीय लहजे में फारसी भाषा में बात करते हैं। सावे नगर के उपहारों में अनार और सूखी अंजीर उल्लेखनीय है। सावे में अनार इतना अधिक पैदा होता है कि इसको निर्यात भी किया जाता है।
सावे नगर का कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जलवायु अर्ध मरुस्थलीय है। सावे नगर की राजधानी तेहरान के दक्षिण में 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 995 मीटर है। सावे नगर का इतिहास 7,000 वर्ष पुराना है। इस्लाम के उदय के पश्चात इस नगर में कुरान के उच्च शिक्षाओं के आधार पर इस्लामी संस्कृति यहाँ पर प्रचलित हुई। सावे के क्षेत्र में पाई जाने वाली ऐतिहासिक मीनारें, प्राचीन टीले और अन्य धरोहरें इस नगर की प्राचीनता की परिचायक हैं।
सावे नगर में की जाने वाली खुदाई में यहाँ पर 5,000 वर्ष ईसा पूर्व के इतिहास का पता चला है। सावे नगर में अति प्राचीनतम धरोहर एवं शिलालेख हैं जो यहाँ पर एक नगर की उपस्थिति की गाथा सुनाती हैं। इस शिलालेख पर यूनानी भाषा में सावेते लिखा है, जिसका संबंध लगभग 3,000 वर्ष ईसा पूर्व से है। इस शिलालेख की खोज ऑस्ट्रिया के एक पुरातनविद ने की थी। वर्तमान समय में ये शिलालेख ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के संग्रहालय में मौजूद है।
ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर कहा जा सकता है कि लगभग 2600 वर्ष पहले माद और पार्थ शासन श्रृंखलाओं के दौरान सावे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था, जो रई से हमदान जाने वाले मार्ग पर स्थित था। पार्थ शासन श्रृंखला के दौरान सावे नगर यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण शरण स्थल भी था। ईसा से 700 वर्ष पूर्व सावे नगर को माद शासन श्रृंखला की महत्वपूर्ण छावनी माना जाता था। विश्वविख्यात पर्यटक मार्को पोलो ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ पर उपासना स्थल और अग्निकुंड की उपस्थिति की बात कही है। ये बिंदु भी इस क्षेत्र में प्राचीन काल में मानव जीवन की उपस्थिति की गाथा कहता है। वर्तमान समय में भी सावे नगर में प्राचीनकालीन उपासना ग्रह उपस्थित हैं, जिनमें से एक किले दुख्तर है। ये दुर्ग एक ऊंचे पर्वत पर सावे झील के निकट सावे नगर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किले दुख्तर नामक दुर्ग ईरान में इस्लाम के उदय काल से पूर्व की पची हुई धरोहर है।
ईरान के दूसरे कई अन्य नगरों की ही भांति सावे नगर भी विगत में भारी परिवर्तनों का साक्षी रहा है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हजरत मासूमा का सावे नगर में प्रवेश वो महत्वपूर्ण घटना है जो इस्लामी काल के आरंभ में इस नगर में घटी थी। दैलमियों और सलजूकियों के शासनकालों में सावे नगर इस शासन श्रृंखलाओं के शासकों की शीतकालीन राजधानी रहा करता था। 5वीं हिजरी कमरी में 6ठी हिजरी कमरी के मध्य तक सावे में विकास की प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंच चुकी थी।
यह नगर सलजुकी संयुक्त कबीलों के प्रमुखों के केंद्र में परिवर्तित हो चुका था, जिन्हें अतबक के उपनाम से पुकारा जाता था। वर्ष 617 हिजरी कमरी में ईरान पर मंगोलों के आक्रमण के दौरान सावे नगर को बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। मंगोलों ने सावे नगर को आग लगाकर नष्ट कर दिया। उन्होंने यहाँ के रहने वालों का बड़ी निर्दयता से जनसंहार किया। वरिष्ठ इतिहासकारों का कहना है कि विश्व का तत्कालीन महत्वपूर्ण पुस्तकालय सावे में था।
मंगोलों के आक्रमण में यहाँ के पुस्तकालय को आग लगा दी गई, जिसके कारण पुस्तकों के साथ ही खगोल शास्त्र से संबंधित कई उपकरण भी जल गए जिनका प्रयोग खगोल शास्त्र में किया जाता था। सावे नगर की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए 7वीं शताब्दी के प्रमुख इतिहासकार ज़किरिया कज़वीनी लिखते हैं कि इस नगर पर मंगोलों के आक्रमण से पूर्व ये एक बहुत ही सुंदर नगर था, जहां पर बहुत घने एवं फलदार वृक्ष लगे हुए थे।
सावे के विनाश के बाद हलाकू के उत्तराधिकारी ईल खानान के काल में यहाँ के महत्वपूर्ण भागों का पुनर्निर्माण किया गया, किंतु तैमूरियों और आख कोयनलू के काल में शहजादों की परस्पर प्रतिस्पर्धा और लूटपाट में सावे नगर को गहरा आघात लगा था। सफवी शासन काल में सावे क्षेत्र सफवी सरकार से संबंधित संगठनों का ठिकाना रहा और यहाँ पर तेजी से प्रगति हुई। जंदिया काल में इस नगर में व्यापारिक गतिविधियों को तीव्र करने के लिए पुनः प्रयास किए गए, किंतु तेहरान के राजधानी बनने के साथ सावे के महत्व में भारी कमी आई। काजार शासन काल के मध्य दौर से सावे के रहने वालों का तेहरान की ओर पलायन आरंभ हो गया। वर्तमान समय में सावे नगर उस्ताने मरकजी का एक विकसित एवं समृद्ध नगर है।
दोस्तों, अपनी प्राचीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण सावे नगर में बहुत सी ऐतिहासिक धरोहरें और प्राचीन इमारतें पाई जाती हैं। इन धरोहरों को राष्ट्रीय धरोहरों की सूची में पंजीकृत किया जा चुका है। सावे के सांस्कृतिक धरोहर विभाग के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर 228 धरोहरें पाई जाती हैं। इन ऐतिहासिक धरोहरों में धर्मशालाएँ, बाजार, पवित्र ऐतिहासिक स्थल और ऐतिहासिक टीले आदि शामिल हैं। इनमें से अब तक 53 धरोहरों को ईरान की राष्ट्रीय धरोहर की सूची में पंजीकृत किया जा चुका है। सावे की ऐतिहासिक धरोहरों में से कुछ ऐसी भी हैं जिनकी गणना यहाँ की अति प्राचीन इमारतों में होती है। मस्जिद जामे उन्हीं धरोहरों में से एक है। यहाँ पर हम आपको सावे नगर के कुछ ऐतिहासिक स्थलों से अवगत करवाने जा रहे हैं।
सावे की जामा मस्जिद 12 शताब्दी पुरानी है। इस हिसाब से ये इस्लामी काल के आरंभिक धरोहर है। वास्तुकला, टाइल्स के काम और चूने के काम का ये एक अद्भुत खजाना है जिसको देखते ही बनता है। 2500 वर्ग मीटर में फैली इस भव्य मस्जिद में प्रांगण, हॉल, मीनार, गुंबद और मेहराब पाए जाते हैं। इस मस्जिद के दो प्राचीन मेहराबों पर कूफी लिपि में शिलालेख लगे हुए हैं, जबकि दो अन्य मेहराब सफवी शासन काल के हैं, जिन पर सुल्स लिपि के शिलालेख टंगे हुए हैं। यहाँ पर लंबवत आकार में चौड़ाई में कई शिलालेख पाए जाते हैं, जिन पर कूफी तथा सुल्स लिपि में पवित्र कुरान के कुछ सूरे लिखे गए हैं। सावे के जामा मस्जिद के गुंबद की ऊंचाई 16 मीटर है, जबकि उसकी मोटाई 14 मीटर। गुंबद के निचले भाग पर बहुत सुंदर ढंग से टाइल्स का काम किया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सावे की जामा मस्जिद इस्लामी काल की वास्तुकला का एक रोचक उदाहरण है। इस मस्जिद की मरम्मत सल्जूकी, सफवी और काजारी कालों में कराई गई और सन 1310 हिजरी शमसी में इसे ईरान की राष्ट्रीय धरोहरों की सूची में पंजीकृत किया जा चुका है। इस मस्जिद के पूर्वोत्तरी कोने और उसकी चार दीवारी के बाहर ईंटों से बनी एक ऊंची मीनार है, जिसका संबंध सल्जूकी काल से है। इस मीनार का निचला भाग सादा है, जबकि उसके ऊपरी भाग पर ईंटों से साज सज्जा की गई है। विशेष बात यह है कि इस पर ईंटों से कूफी लिपि में एक शिलालेख पर कुछ लिखा हुआ है।
दोस्तों, सामान्यतः किसी शहर के बाजार में घूमने का एक विशेष आनंद होता है। सावे नगर में भी एक बाजार है जो वहां का ऐतिहासिक बाजार है। इस बाजार का संबंध सफवी शासन काल से है। इस ऐतिहासिक बाजार को सन 1378 हिजरी शमसी में देश की राष्ट्रीय धरोहर के रूप में पंजीकृत किया जा चुका है। सावे का ये बाजार लगभग 600 मीटर लंबाई में बना हुआ है। इसकी एक विशेषता यह है कि बाजार का कुछ भाग खुला हुआ है, जबकि इसका कुछ भाग छत से ढका हुआ है। इसके भीतर जहां पर प्राचीन ढंग की दुकानें मौजूद हैं, वहीं पर आधुनिक ढंग की दुकानें भी देखी जा सकती हैं। स्थानीय लोगों में ये बाजार इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि यहां पर मौजूद चीज़ों की कीमतें मुनासिब होती हैं। सावे के इस प्राचीन बाजार में एक प्रांगण भी है, इसमें किनारे मस्जिद भी बनी हुई है।
सावे के पारंपरिक बाजार के निकट एक आकर्षक दर्शनीय स्थल है, जिसको गुम्बदे चहार सूक या तकिया चहार सूक कहते हैं। वर्तमान समय में ये मानव विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान संग्रहालय के रूप में मौजूद है। संग्रहालय की इस इमारत के गुम्बद की ऊंचाई जमीन से 14 मीटर है। इस इमारत का संबंध लगभग 500 वर्ष पूर्व सफवी काल से बताया जाता है। ये 12 कोणीय एक इमारत है। इसमें चार दालान बने हुए हैं जो चारों बाजार की ओर खुलते हैं। वर्तमान समय में बाजार से मिलने वाले इसके केवल दो ही दालान खोले गए हैं,
बाकी दो दालानों को बंद कर दिया गया है। मुहर्रम के महीने में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस संग्रहालय में मिट्टी और तांबे के बने हुए बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ पर सोने के सिक्के और हस्तलिखित पुस्तकें भी मौजूद हैं। यहाँ पर प्राचीन काल में प्रयोग किए जाने वाले ताले भी नुमाइश के लिए रखे गए हैं। इस संग्रहालय में काजार काल की जीवन शैली को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उस काल के परिधानों और वस्तुओं को रखा गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
उज्ज्वल भविष्य।
दोस्तों, कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस कार्यक्रम में हम एरोस्पेस के क्षेत्र में ईरान की प्रगति पर चर्चा करेंगे।
दोस्तों, इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरान की प्रगति का एक स्पष्ट उदाहरण शैक्षणिक संस्थानों की मात्रा और उनकी गुणवत्ता में वृद्धि का होना है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता के स्तर तक पहुंचने से पहले साक्षरता में वृद्धि करना जरूरी होता है। इसके बाद उच्च शिक्षा का नंबर आता है, जिसका समाज में काफी महत्व है, इसलिए कि समाज के विकास और प्रगति में इसका बुनियादी योगदान रहता है। वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जैसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा की भूमिका बहुत अहम होती है। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने इन सभी क्षेत्रों में एक बड़ी छलांग लगाई है। ISI डेटाबेस के अनुसार ईरान ने हालिया वर्षों में क्षेत्र में पहला वैज्ञानिक और दुनिया में 15वां रैंक प्राप्त कर लिया है।
पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि परमाणु तकनीक एक जटिल तकनीक है, लेकिन पिछले दो दशकों के दौरान ईरान ने इस तकनीक में अच्छा विकास किया है। परमाणु ऊर्जा पानी, हवा, गैस, तेल और कोयले की तरह एक ऊर्जा है, लेकिन अन्य ऊर्जाओं की तुलना में इसकी शक्ति काफ़ी अधिक है और इसकी गिनती उन ऊर्जाओं में होती है जो समाप्त होने वाली नहीं है। आने वाले समय में ऊर्जा संकट और ईंधन की कमी की भविष्यवाणियों और विज्ञान के कई क्षेत्रों में इसके महत्व के मद्देनज़र कई देश परमाणु तकनीक के शोध पर काफ़ी खर्च कर रहे हैं।
परमाणु तकनीक के अलावा आज दुनिया में जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा और प्रगति तथा विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान है, वो है एरोस्पेस। विश्व प्रसिद्ध फोटान इंस्टीट्यूट के अनुसार ईरान एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरती शक्तियों में से एक है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के मामले में वो विश्व में 11वें स्थान पर है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक समूह है जो पृथ्वी और अन्य खगोलीय पिंडों के चारों ओर अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए रोबोट और गैर रोबोटिक डेटा का अन्वेषण और अनुसंधान करता है। वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में अंतरिक्ष तकनीक के विस्तार के साथ ही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास पर भी जोर दिया जाता है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का ये मानना है कि अंतरिक्ष धन पैदा करने का एक अवसर है और ये रोजगार सृजन में भी प्रभावी सिद्ध हो सकता है। इसी आधार पर विभिन्न देशों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास के प्रयास किए हैं। ईरान भी अपने शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के प्रयासों से दुनिया में एक अच्छे स्थान पर पहुंच चुका है।
आज दुनिया में उपग्रहों को तीसरी आंख समझा जाता है और जो देश इस तकनीक और उद्योग से लाभ नहीं उठा रहे हैं उन्हें अंधा देश कहा जाता है। 1950 के बाद से जब से इंसान ने अंतरिक्ष में कदम रखा है तब से मानव जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आज की दुनिया की एक बड़ी सच्चाई है कि अब इंसान अंतरिक्ष उपलब्धियों के बिना नहीं रह सकता। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उत्पादनों में से एक मोबाइल टेलीफोन सिस्टम है जो मानव जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा ये नेविगेशन सिस्टम का अभिन्न अंग है कि जहां आसमान, जमीन और समुद्र में परिवहन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नेविगेशन के मार्गदर्शन में किया जाता है।
आज ईरान के 14 विश्वविद्यालयों में एरोस्पेस का विषय पढ़ाया जाता है, जिसमें 250 से अधिक फैकल्टी विभिन्न विभागों और कॉलेजों में सक्रिय हैं। 4000 स्नातक अब तक इस विषय में डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की तरह ही ईरान के दुश्मनों ने एरोस्पेस के क्षेत्र में भी देश के सामने रुकावटें खड़ी करने के लिए ईरानोफोबिया का जमकर प्रचार किया और झूठ फैलाया। वे एरोस्पेस के क्षेत्र में भी ईरान पर सैन्यकरण का आरोप लगा रहे हैं और ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि एरोस्पेस में प्रगति का ईरान का उद्देश्य अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाना है।
दुनिया में कई उद्योगों और वैज्ञानिक क्षेत्रों का इस्तेमाल दो अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। सैन्य उद्योग की कई उपलब्धियों का इस्तेमाल मानव उपलब्धियों में बेहतर जीवन के लिए किया जाता है। संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कई मानवीय उपलब्धियों को पहले सैन्य क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता था। अमरीका और उसके कुछ सहयोगी दो मुख्य कारणों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में ईरान की प्रगति के मार्ग में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं, या उसके पड़ोसियों को डराने के लिए उसकी प्रगति को सैन्य आयाम देने का प्रयास कर रहे हैं। ईरानोफोबिया के परिप्रेक्ष्य में उद्देश्य यह है कि ईरान की प्रगति और विकास दुनिया के सामने नहीं आ सके और दुनिया के सामने ईरान की पिछड़े हुए देश की छवि बनी रहे। कितने ही पर्यटक, विशेष रूप से पश्चिमी पर्यटक, जब ईरान की यात्रा करते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पश्चिमी मीडिया में जो कुछ उन्होंने देखा और सुना था, जब वे यहाँ आकर उससे बिल्कुल ही अलग तस्वीर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं और इस देश की प्रगति की सराहना किए बिना नहीं रहते।
ईरान की नई प्रगतियों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। एक पूर्ण परमाणु ईंधन चक्र की उपलब्धि, पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का अनावरण या सैटेलाइट लॉन्चर को कक्षा में लॉन्च करना कोई ऐसा काम नहीं है जिस पर पर्दा डाला जा सके। अमेरिका और ज़ायोनी शासन के नेतृत्व में ईरान के दुश्मन ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम और एरोस्पेस कार्यक्रम को क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से वे ईरान के रास्ते में रुकावटें डालने का काम करते रहते हैं और बहाना तलाश कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के शासनकाल में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद द्वारा ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को पारित करवाया गया था। इन प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम और इसी तरह से एरोस्पेस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति जारी रखी और कई अहम उपलब्धियां अर्जित की।
पिछले एक दशक के दौरान ईरान ने कई सैटेलाइट लॉन्चर अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं और कई छोटे उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है, जिसकी अमरीकी एरोस्पेस संस्थानों ने पुष्टि की है। ईरान पहला मुस्लिम देश है जिसने इतनी महान सफलता हासिल की है। संचार के युग में एरोस्पेस के क्षेत्र की उपलब्धियों पर अधिकांश औद्योगिक देश ध्यान देते हैं। परमाणु तकनीक, सफल मिसाइल कार्यक्रम और दूरसंचार उद्योग में विस्तार, ऑटोमोबाइल, स्टील उद्योग, तेल और गैस और पेट्रोकेमिकल उद्योग आदि का विकास ये दर्शाता है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान ने विश्व के विकसित देशों के क्लब में प्रवेश कर लिया है।
आज इस्लामी गणतंत्र ईरान जैसे देश ने अपनी मूल्यवान और महान इस्लामी क्रांति के 4 दशकों के बाद न सिर्फ कई महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी हासिल की है बल्कि विश्व स्तर पर आधुनिकतम तकनीक अर्थात संचार, एरोस्पेस और मिसाइल जैसे क्षेत्रों में खुद को स्थापित कर लिया है। ईरान ने काफी कम समय में छोटे उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं। प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने और नुकसान से बचने के लिए सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा खनिजों की खोज, जलवायु परिवर्तन, वन, चरागाहों, महासागर और अन्य क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। संचार, डेटा ट्रांसमिशन और इमेजेस के लिए उपग्रहों के उपयोग से मानव जीवन में काफी परिवर्तन हुआ है। दुनिया भर से लाइव टेलीविजन और टेलीफोन संचार तकनीक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास की ही देन है।
नए उपग्रह निर्माण और प्रक्षेपण तकनीक ईरान को इस बात की सुविधा देते हैं कि वो एरोस्पेस तकनीक को संचार, भूविज्ञान, जलवायु परिवर्तन, वन सुरक्षा और पृथ्वी के तापमान जैसे विभिन्न आयामों की निगरानी कर सके। ईरान की भौगोलिक स्थिति और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उसका अस्तित्व होना कि जहाँ कई विविधताएँ हैं उसे इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वे उपग्रहों की सहायता से अपनी सरजमीन की निगरानी करें।
वास्तव में ईरानी वैज्ञानिकों का ये मानना है कि उपग्रहों के निर्माण, उनकी पहचान और उन्हें लॉन्च करने की तकनीक का हासिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि इस तकनीक से सही तौर पर लाभ उठाया जा सके। ईरान का एरोस्पेस कार्यक्रम 20 साल पुराना हो चुका है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान और फिर प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं ताकि उपग्रहों की डिजाइनिंग, निर्माण और उनका परीक्षण किया जा सके और फिर उन्हें लॉन्च करके उनसे लाभ उठाया जा सके। ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी श्रृंखला की कड़ी है जो पूरी तरह से स्वदेशी है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। ईरान द्वारा यूनान के दो ऑयल टैंकरों को रोके जाने से अमेरिका परेशान हो गया है। जानवी संसद ने कहा है कि मस्जिदुल अक्सा के अंदर नेसट बनाने का समय आ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस पर लगे प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हो रहा है। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज़।